ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 94। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार का बीज अहंकार है। जब अहम भाव होता है तब संसार होता है, पर अहंकार वस्तु कुछ भी नहीं, भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे मूर्ख बालक परछाई में पिशाच की कल्पना करता है, पर पिशाच कुछ वस्तु नहीं, उसके भ्रम से होता है, वैसे ही अहंकार कुछ वस्तु नहीं, स्वरूप के भ्रम से होता है। हे रामचंद्र जी, जो वास्तव में कुछ वस्तु नहीं तो उसके त्यागने में क्या कठिनाई है? तुम्हें अहंकार वास्तव में नहीं है, तुम केवल शांत रूप चैतन्य मात्र हो, उसमें अहम भाव होना उपाधि है, उससे सुमेरु पर्वत आदि जगत बन जाता है जो संवेदन रूप है। चित्त रूपी पुरुष चैतन्य के आश्रय से चेतता है और विश्व की कल्पना करता है। जैसे रस्सी के आश्रय सर्प दिखता है, वैसे ही चैतन्य के आश्रय विश्व और चित्त का उदय होता है, पर यह आत्मा से भिन्न नहीं है। मैं हूं ऐसा जो अहम भाव है सो दुख की खान है। सब आपदाएं अहंकार से होती है। जब अहंकार नष्ट होगा तब सब दुख भी नष्ट होंगे। हे रामचंद्र जी, जैसे सूर्य के आगे बादल होते हैं तो प्रकाश नहीं होता, जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश भासित होता है और कमल प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही आत्मरूपी सूर्य को अहंकार रूपी बादल का आवरण हुआ है। माया के किसी गुण से मिलकर अपने को कुछ मानने को अहंकार कहते हैं। जब अहंकार रूपी बादल नष्ट होगा तब आत्मरूपी सूर्य का प्रकाश होगा और ज्ञानवान रूपी कमल उस प्रकाश को पाकर बड़े आनंद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, इससे अहंकार के नाश का उपाय करो तो तुम्हारे दुख भी नष्ट हो जाए। वह कौन काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता? अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सच्छास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करो। ज्ञान की परस्पर चर्चा करो, उससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट हो जाता है। बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है, परंतु अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे रामचंद्र जी, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करो। मैं कौन हूँ, इंद्रिया क्या है, गुण क्या है और संसार क्या है, ऐसे विचार से तुम समझो कि इनके साक्षीभूत तुम हो। तुम में अहम त्वम कोई नहीं, इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना कोई न फूरेगी, केवल सुषुप्ति के नए स्थित होंगे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो आपका अहंकार नष्ट हुआ है तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते हो, और जो अहंकार नहीं है तो सर्वशास्त्र और ब्रह्म विद्या कहाँ से उपजे है, और उपदेश कैसे होता है? उपदेश में तो चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। प्रथम जब उपदेश करने की इच्छा होती है तब अहंकार सिद्ध होता है। जब स्मरण होता है कि उपदेश करूं तब चित्त भी चैत्य से सिद्ध होता है। फिर यह उपदेश करिए यह न करिए ऐसे संकल्प से मन की सिद्धि होती है। फिर जब निश्चय किया कि यह उपदेश करिए तब बुद्धि की सिद्धि होती है। इसे चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। आप कैसे कहते हैं कि अहंकार नष्ट हो जाता है और सब चेष्टाएं होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मस्वरूप में अहंकार आदि अंतःकरण और इंद्रिया कल्पित है, वास्तव में कुछ नहीं। शास्त्र का उपदेश भी कल्पना है। आत्मा केवल आत्मतत्व मात्र है। उसे संवेदन करके अहंकार आदि दृश्य उपजे हैं, जिनके निवृत्त करने को वृत्त होते हैं। जैसे रस्सी में भ्रम से सर्प दिखता है तो उसके भय से आदमी दुख पाता है, पर जब कोई कहे कि यह सर्प नहीं रस्सी है तो भय मत कर, इसको भली प्रकार देख, तो उसके उपदेश से वह भली प्रकार देखता है, तब उसका भय और शोक निवृत्त हो जाता है, क्योंकि इसको भ्रम से सर्प का भान हुआ था। वह भान भी मिथ्या है और उसको रस्सी का उपदेश करना भी मिथ्या है, क्योंकि रस्सी तो आगे से सिद्ध है, उपदेश से सिद्ध नहीं होती। वैसे ही रस्सी की भांति आत्मा है, उसका विवर्त जो चैतन्य रूप स्फुरण है उसको अहम भाव कहते हैं, और उसी अहंकार के निवृत्त करने को शास्त्र है। आत्मरूपी रस्सी के प्रमाद से अहंकार रूपी सर्प प्रकट हुआ है और उसके निवृत्त करने को शास्त्र के उपदेश हुए हैं। जो आत्मा को जगा देते हैं, जब भली प्रकार रस्सी की तरह आत्मा को जाना, तब सर्प के सदृश जो परिचिन्न अहंकार है वह नष्ट हो जाता है। जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है, तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। वास्तव में न कोई अहंकार है और न शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान के साथ चारों अंतःकरण और इंद्रियां भी देख पड़ती है, पर उनमें सत्यता नहीं होती है। जैसे भुना हुआ बीज दिखाई देता है पर उगने की सत्यता नहीं रखता, जैसे जला वस्त्र देखने मात्र को है पर उसमें सत्यता कुछ नहीं होती, वैसे ही ज्ञानवान को अभिलाषा रूप अहंकार नहीं होता और उससे वह कष्ट नहीं पाता। जैसे सूर्य की किरणों से मरुस्थल में जलाभास होता है और उसको देखकर पीने के लिए मृग दौड़ता और दुखी होता है, वैसे ही दृश्य रूपी मरुस्थल में पदार्थ रूपी जलाभास को देखकर अज्ञान रूपी मृग दौड़ते हैं और दुख पाते हैं। जब ज्ञान रूपी वर्षा से आत्मरूपी जल चढ़ा तब चित्त रूपी मृग कहाँ दौड़े? जब ज्ञान रूपी वर्षा होती है और अनुभव रूपी जल चढ़ता है तब चित्त रूपी मृग में यत्न रूपी जो स्फुरण था वह नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अहंकार अविचार से सिद्ध है और विचार से क्षीण हो जाता है। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण होती है और जब अधिक तेज होता है तब जल रूप हो जाती है, बर्फ की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही अहंकार रूपी बर्फ विचार रूपी किरणों से क्षीण हो जाती है। जब दृढ़ विचार होता है तब अहंकार संज्ञा नष्ट हो जाती है और केवल आत्मा ही रहती है। राम जी ने पूछा, हे सर्व तत्वज्ञ भगवन, जिसका अहंकार नष्ट होता है उसका लक्षण क्या है, सो आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी गढ़ा संसार है, उसमें पदार्थ की सद्भावना से वह नहीं गिरता जिसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र में नदियां स्वाभाविक रूप से आकर मिलती हैं, वैसे ही उसको क्षमा शांति आदि शुभ गुण स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। उसका क्रोध भी नष्ट हो जाता है और देखने मात्र यदि भासता भी है तो अर्थाकार नहीं होता। विषमता करके भिन्न भावना हृदय में नहीं फूरती और केवल सत्ता समान में स्थित होता है। जैसे शरतकाल का मेघ गरजता है पर वर्षा से रहित होता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा वह अभिमान से रहित होकर करता है। जैसे वर्षा ऋतु के जाने से कोहरा नहीं रहता, वैसे ही उसकी अभिमान चेष्टा नष्ट हो जाती है और लोभ भी मन से जाता रहता है। जैसे वन में अग्नि लगती है तो मृग और पक्षी उस वन को त्याग जाते हैं, वैसे ही लोभ रूपी मृग उसको त्याग जाते हैं और उसके मन में कोई कामना नहीं रहती। जैसे दिन में उल्लू और पिशाच नहीं विचरते, वैसे ही जहां ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है वह संपूर्ण कामना रूपी तम नष्ट हो जाता है और शांत रूप आत्मा में स्थित रहता है। जैसे मजदूर दो पोटों को ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में उठाता है और गर्मी में थकता है तो उसको डालकर वृक्ष के नीचे सुख से स्थित होता है, वैसे ही वासना रूपी पोट है और अज्ञान रूपी धूप है, उससे दुखी होता है, पर ज्ञान रूपी बल करके वासना रूपी पोट को डालकर सुख से स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, उस पुरुष की भोग वासना नष्ट हो जाती है और फिर उसे दुख नहीं देती। जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भागता है और फिर निकट नहीं आता, वैसे ही ज्ञान रूपी गरुड़ को देखकर भोग रूपी सर्प भागते हैं और फिर निकट नहीं आते। आत्मपद को पाकर ज्ञानी शांति रूप दीपक पद प्रकाशमान होता है और भाव अभाव पदार्थ उसको स्पर्श नहीं करते और उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। ज्ञान समझने मात्र है, कुछ यत्न नहीं। संतों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, भोग क्या है, और इससे तरकर कैसे परम पद को प्राप्त हो। फिर जो ज्ञानवान उपदेश करे उनके अभ्यास से आत्मपद को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु नामक बड़े राजा जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो, क्योंकि तुम भी उसी कुल में उपजे हो। हे रामचंद्र जी, वह सब राजाओं से श्रेष्ठ सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा मनु का पुत्र और सूर्य का पौत्र था। जैसे पितरों का राजा धर्म है, उसका स्वभाव शीतल था, जैसे सूर्य को देखकर मणि से तेज प्रकट होता है, वैसे ही उसको देखकर शत्रु संतप्त होते थे। पर साधु मित्र और प्रजा को वह रमणीय लगता था और वे सब उसको देखकर शांति पाते थे। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमुखी कुमुद प्रसन्न होते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते थे। वह पाप रूपी वृक्षों का काटने वाला कुल्हाड़ा और मित्रों को सुखदायक था। जैसे मोरों को मेघ सुखदायक होता है, सुंदर तो वह ऐसा था कि उसको देखकर उसके पास लक्ष्मी स्थिर हो रही थी, उसके यश से संपूर्ण पृथ्वी भर रही थी। वह राजा भली प्रकार प्रजा का पालन करता था। एक समय उसके मन में विचार उपजा कि संसार में जरा मरण आदि बड़े कष्ट है और इस संसार दुख से तरने का उपाय क्या है। ऐसे वह विचार रहा था कि इतने में शंभु मुनि ब्रह्मलोक से आए। उसने उनका भली प्रकार पूजन करके पूछा, हे भगवान, आपकी कृपा का प्रताप मेरे हृदय में बैठकर प्रश्न करने को प्रेरित करता है, इससे मैं प्रश्न करता हूं। हे भगवान, मेरे हृदय में संसार बसता है और जैसे समुद्र को बड़वाग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको जलाता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मुझको शांति हो। हे भगवान, यह संसार कहाँ से उपजा? दृश्य का स्वरूप क्या है और वह कैसे निवृत्त होगा? जैसे जाल में से पक्षी निकल जाता है, वैसे ही जन्म मरण रूपी संसार महाजाल से मैं निकलना चाहता हूं। जैसे वरुण समुद्र के सब स्थान जानता है, वैसे ही तुम जगत के सब व्यवहारों को जानते हो और संशय के निवृत्त करने वाले हो। अज्ञान रूपी तम के नाशकर्ता तुम सूर्य ही हो। तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं शांति को प्राप्त होऊंगा। मुनि बोले, हे साधो, मैं चीरकाल पर्यंत जगत में विचरता रहा हूं, परंतु ऐसा प्रश्न मुझसे किसी ने नहीं किया। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न अनर्थ का नाश करने वाला है। तेरी बुद्धि विवेक से विकासमान हुई देख पड़ती है। हे राजन, जो कुछ जगत तुझको भासित होता है सो सब असत है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे यह जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंग असत रूप है, वैसे ही जगत असत रूप है। जो मन सहित क्षण इंद्रियों से अतीत है और शून्य भी नहीं, सो सत और अविनाशी आत्मा कहलाता है। वह निर्मल परब्रह्म सर्व ओर से पूर्ण और अनंत है, उसी में जगत कल्पित है। हे राजन, जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्यापक है, वैसे ही सब पदार्थों में एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक है। जैसे अचल समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं, वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती हैं। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले चक्र आदि होते हैं, वैसे ही आत्मा में जीव आदि का आभास होता है। प्रथम स्फुरण रूप होते हैं और पीछे कारण कार्य रूप होते हैं। चित्त शक्ति अपने संकल्प से भूत आदि देह रचती है, उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्मा अभिमान करता है। जैसे कुसवारी की क्रिया अपने बंधन का कारण होती है, वैसे ही जीव को अपना संकल्प बंधन का कारण होता है। हे राजन, जीव कला को स्वरूप का अज्ञान हुआ है, इसे जैसे बालक को अपनी परछाई यक्षरूप होकर डराती है, वैसे यह नाना प्रकार के आरंभ को प्राप्त हुआ है। और कारण ही ब्रह्म शक्ति फूरने से कारण भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें बंधन और मोक्ष भासित होते हैं, पर वास्तव में न बंधन है न मोक्ष है। निरामय ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह सकते। इसे बंधन मोक्ष की कल्पना को त्याग कर तुम अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, माँ विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।